Jaya Radha Madhava कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivraja Kacharya Shtotra Satishti Vangre Sabra Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जाए. श्री श्री राधा गोकुलानंद की जाए. श्री श्री गौरनिताय की जाए. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जाए. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए. श्री वृंदावन धाम की जाए. श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जाए. निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जाय. समवेत भक्त वृंद की जाय. समवेत भक्त वृंद की जाय. श्री श्री गुरु गौरांग की जाय. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस दिवस पर करीब 5200 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण इस धरातल पर प्रकट हुए थे। थोड़े दिन पहले पूर्णिमा की तिथि पर श्री बलराम जी प्रकट हुए थे, उनकी आविर्भाव तिथि है। और उस समय हम चर्चा कर रहे थे कि माता देवकी के 6 पुत्र हुए और इन 6 को ही कंस ने मार डाला बड़े क्रूरता से। सातवें गर्भ माता देवकी के वो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम जी थे, शेष जो उनके गर्भ में प्रकट होके भगवान श्री कृष्ण के योग माया को आदेश दिए जाने के अनुसार स्थानांतरित किए गए माता रोहिणी के गर्भ में। माता रोहिणी उस समय गोकुल में थी, नंद महाराज के संरक्षण में, और माता देवकी वसुदेव के साथ में कंस के राज्य में थी, कंस के कारागार में। बलराम जी जब रोहिणी देवी के गर्भ से प्रकट हुए तो वहां सभी को बड़ा आनंद आया। कि अभी वसुदेव और रोहिणी देवी का पुत्र का जन्म हुआ है। उधर सभी ने सोचा मथुरा में कि माता देवकी के सातवें गर्भ का पतन हुआ है, गर्भपात हुआ है, और सभी लोग बहुत दुखी हो गए थे। वास्तव में गर्भपात नहीं हुआ था, योग माया के द्वारा केवल गर्भ का स्थानांतरण हुआ था, और श्री कृष्ण के माता देवकी के गर्भ में प्रकट होने के लिए शेष तैयारी मात्र कर रहे थे, अन्यथा वो सीधे माता रोहिणी के गर्भ में प्रकट हो सकते थे। तो ऐसे जब श्री कृष्ण प्रकट होना चाहते थे माता देवकी के अंदर, तो सबसे पहले वो प्रकट हुए नंद महाराज के हृदय में। नंद महाराज का हृदय उस समय श्री कृष्ण से जब भर गया, तो नंद महाराज सूर्य के समान प्रकाशमान लग रहे थे। इतना तेज उनका था कि कोई उनको ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, देखा नहीं जा रहा था, इतना तेज था उनका। जिस प्रकार हम सूरज की ओर आंखें उठाकर देख नहीं सकते हैं, सूरज का प्रकाश इतना तीव्र होता है, हमारी आंखें उतने तेज को सहन नहीं कर सकती हैं, तो उसी प्रकार से वसुदेव बहुत प्रकाशमान हो गए, भगवान श्री कृष्ण के उनके हृदय के अंदर स्थित होने के कारण। यहां श्री कृष्ण अपने पूर्ण रूप में उपस्थित थे उनमें, और मूल जो श्री कृष्ण हैं उनमें कोई अंतर नहीं था। अपने समस्त विस्तारों के सहित श्री कृष्ण ब्रजभूमि में, मथुरा में, वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए थे। वसुदेव ने समझ लिया कि भगवान अब प्रकट होने जा रहे हैं, उनको बड़ा आनंद आया, प्रसन्न चित्त के थे भगवान के अंदर होने के कारण, और फिर भगवान ने स्वेच्छा से वसुदेव के हृदय से अपने आप को स्थानांतरित किया माता देवकी के हृदय में। जिस प्रकार से माता और पिता को एक साथ आना पड़ता है संतान की उत्पत्ति के लिए इस भौतिक सृष्टि में, ऐसी पद्धति को वसुदेव और देवकी को अपनाना नहीं पड़ा, क्योंकि श्री कृष्ण का जो प्राकट्य है वो दिव्य होता है। अन्य साधारण बच्चों के जन्म की तरह भगवान का जन्म नहीं होता है, बल्कि भगवान वास्तव में देखा जाए तो जन्म ही नहीं लेते हैं, वो केवल प्रकट हो जाते हैं। माता देवकी के हृदय में जब उन्होंने अपने आप को स्थानांतरित किया अपनी इच्छा से, तो माता देवकी अब इस समय बहुत तेजस्विनी लग रही थी, और माता देवकी जो पहले से ही बहुत सुंदर थी, अब और इतनी सुंदर लगने लगी कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। और जब कंस ने अपनी बहन देवकी को देखा, तो कंस को निश्चय हो गया कृष्ण, हरे कृष्ण, तो कंस को निश्चय हो गया कि अवश्य विष्णु अब मेरे बहन देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, इसलिए देवकी का सौंदर्य इस समय कुछ अद्वितीय लग रहा है, अतुलनीय लग रहा है, अवश्य भगवान उसके अंदर प्रकट हुए हैं। देवकी के अंदर भगवान उस तरह से प्रकट हुए मानो कि वो पूर्व दिशा में आसमान में चंद्रोदय हो रहा है। शाम के समय जब पूर्व दिशा में चांद का उदय होता है तो वो पश्चिम दिशा में सूरज के अस्त होने का समय होता है। तो शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो जो श्री कृष्ण पहले सूर्य रूप में वसुदेव के हृदय में स्थित थे, अब उन्होंने अपनी रोशनी अस्त होते समय पूर्व दिशा में चांद को दे दिया, अर्थात श्री कृष्ण अब देवकी के हृदय में प्रकट हो गए। जब ये कहा जाता है कि भगवान किसी के हृदय में प्रकट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भिन्न भिन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी के हृदय में है, परंतु भगवान फिर भी एक है। जिस प्रकार से सूर्य एक है ऊपर आसमान में, फिर भी दोपहर के 12 बजे हर एक व्यक्ति को लगता है कि सूरज मेरे ऊपर है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि सूरज अनेक हो गए हैं, केवल वो प्रकट हो रहे हैं, सबके लिए इस प्रकार प्रकट हो रहे हैं। तो उसी तरह श्री कृष्ण भी सबके हृदय में प्रकट होते हैं, परंतु विशेष रूप से अब देवकी माता के हृदय में वो प्रकट हुए थे। ऐसे प्रकट होने पर जब माता देवकी अति हर्ष का अनुभव कर रही थी और कंस भी सोच रहे थे कि अब क्या किया जाना चाहिए, अवश्य अभी मेरा शत्रु विष्णु यहाँ प्रकट हो गया है मेरे बहन के गर्भ में, उस आकाशवाणी की पूर्ति के लिए कि देवकी का आठवां गर्भ, आठवां पुत्र जो है वो मेरी हत्या करेगा और ये आठवां ही पुत्र है। कंस की प्रथम इच्छा हुई कि देवकी की हत्या कर दे। फिर थोड़े गौर से जब कंस ने विचार किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नहीं, बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल प्रतीक्षा करनी चाहिए उस बच्चे के जन्म के लिए जो मेरे मृत्यु का कारण होना है। जब उस बच्चे का जन्म होगा तब मैं उस बच्चे को देख लूंगा, बच्चे की हत्या करूंगा, अब बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए। मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय को अपनी शूरता वीरता दिखानी चाहिए, और अपना शौर्य कहां दिखाया जाता है? अपना शौर्य दिखाया जाता है रणभूमि में। जब कोई बराबर का शत्रु होता है जो अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ में तैयार होता है युद्ध करने के लिए, ऐसे अवस्था में युद्ध करना और ऐसे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी को हरा देना, ये क्षत्रिय के लिए प्रशंसनीय कार्य होता है। ऐसे कार्यों से क्षत्रिय का यश बढ़ जाता है, उसकी ख्याति बढ़ जाती है। परंतु देवकी कौन है? पहले तो वो स्त्री है, दूसरी बात वो मेरी छोटी बहन है, तीसरी बात वो गर्भवती है, चौथी बात वो मेरे कारागार में बंद है। तो ऐसे अवस्था में यदि मैं देवकी की हत्या करता हूं तो फिर ये क्षत्रिय का काम नहीं होगा और सारा समाज मुझसे घृणा करेगा, मेरी निंदा करेगा, मेरे यश, मेरा ऐश्वर्य, मेरा नाम सब खत्म हो जाएगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि देवकी मेरी बहन है और हमारा परिवार बहुत बड़ा है और ये सब क्षत्रिय परिवार है, तो जो अन्य क्षत्रिय हैं वो थोड़ी चुप बैठने वाले हैं, वो भी प्रतिकार करेंगे। तो ऐसा करने से आपस में परिवार के सदस्यों के बीच में युद्ध हो जाएगा, कईयों की हत्या हो जाएगी। तो मुझे ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं कि मैं मेरी बहन की हत्या करूं। थोड़ा सबर करके, थोड़ा धैर्य रख के मैं उस बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करूंगा और फिर बच्चे की हत्या मैं कर दूंगा। परंतु जब से भगवान श्री कृष्ण देवकी के हृदय में प्रकट हुए थे और कंस को पता चला था कि ऐसे हुआ है, तो कंस की नींद खत्म हो गई। कंस की मन की शांति पूरी तरह से भंग हो गई। वैसे भी जो व्यक्ति असुरी प्रवृत्ति का रहता है, वैसे भी जो व्यक्ति संसार के भोग करने में लगा रहता है, वैसे भी जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार आदि बहुत रहता है, वैसे भी उसकी मन की शांति नहीं रहती है। और ऐसी अवस्था में जब मृत्यु का खतरा इतना सामने आंखों के आ गया था और प्राय ये निश्चित था, अब इतने वर्ष बीत चुके थे आकाशवाणी होकर, और एक एक करके कंस ने 6 पुत्रों का वध की हत्या की थी और अभी 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, तो कंस वैसे भी इतने वर्षों से चिंतित था कि क्या होगा, कब आएगा वो बच्चा। और अब जब ये निश्चय हो गया कि वो बच्चा आने वाला है, तो पूरी तरह से कंस विचलित हो गया। यहां तक कि जब भी वो बैठता था, खड़े हो जाता था, लेटता था, खाता था, पीता था, चलता फिरता घूमता था, वो कृष्ण को स्मरण करता था। कृष्ण उसके चित्त में छा गए थे पूरी तरह से, निरंतर कृष्ण का स्मरण कर रहा था कंस। यहां तक कि जब यदि उसे जल भी पीना होता तो पीते समय जल में भी वो कृष्ण को ही देखता, सपने में भी कृष्ण को देखता, जागते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, उसका सारा चित्त कृष्णमय हो गया। 2400 घंटे कृष्ण का स्मरण सतत करता रहा कंस। फिर भी श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि हम कंस को भक्त नहीं कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि कंस का स्मरण वो प्रतिकूल था, और इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कंस को भक्त नहीं मानते हैं, क्योंकि भक्त की परिभाषा ये होती है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशूलनम भक्तिरुत्तमा, कि जो उत्तम श्रेणी की भक्ति होती है उसमें भक्त बड़े अनुकूल भाव से भगवान की सेवा में बिना कोई भौतिक हेतु के, बिना कोई अन्य अभिलाषा के, केवल भगवान की सेवा ही करते रहता है। तो ऐसे शुद्ध अवस्था में अनुकूल भाव को होना आवश्यक होता है, परंतु कंस का जो भाव था वो अनुकूल नहीं था, वो प्रतिकूल था। कंस श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा था भक्ति भाव से नहीं, परंतु भय से, घृणा से, द्वेष से, इसलिए कंस को भक्त नहीं कहते हैं। तो ऐसे समय बीतता गया। जैसे ही देवताओं को पता चला कि माता देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो चुके हैं, तुरंत वो सब कंस के कारागार में आ गए, अपना नमस्कार भगवान श्री कृष्ण को करने के लिए, भगवान की स्तुति करने के लिए। ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, इंद्र, चंद्र, वरुण आदि जितने भी प्रमुख देवता हैं वो सब आए, नारद आदि भक्त और ऋषि हैं वो भी सब आए, चतुष्कुमार भी आए, ऐसे ऋषि और देवगण सब कंस के कारागार में ऐसे रूप में आए कि कोई अन्य मनुष्य उनको नहीं देख पाए, और वहां पर माता देवकी की के सामने आके वो माता देवकी के गर्भ में स्थित श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। तो उन्होंने स्तुति किस प्रकार से प्रारंभ की, आइए हम पढ़ते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि ये सिद्धांतों से भरा हुआ है। सबसे पहला ही श्लोक जो कि देवताओं ने कहा वो ये है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम
सत्यस्य योनिम् निहितम् च सत्ये सत्यस्य सत्यम् ऋतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकम् त्वाम् शरणम् प्रपन्नाः सत्यव्रतम् सत्यपरम् त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिम् निहितम् च सत्ये सत्यस्य सत्यम् ऋतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकम् त्वाम् शरणम् प्रपन्नाः सत्यव्रतम् सत्यपरम् त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिम् निहितम् च सत्ये सत्यस्य सत्यम् ऋतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकम् त्वाम् शरणम् प्रपन्नाः बोलिएगा सत्यव्रतम् सत्यपरम् त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिम् निहितम् च सत्ये सत्यस्य सत्यम् ऋतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकम् त्वाम् शरणम् प्रपन्नाः सत्यव्रतम् सत्यपरम् त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिम् निहितम् च सत्ये सत्यम् ऋतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकम् त्वाम् शरणम् प्रपन्नाः सत्यव्रतम् सत्यपरम् त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिम् निहितम् च सत्ये सत्यस्य सत्यम् ऋतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकम् त्वाम् शरणम् प्रपन्नाः माताजि सत्यव्रतम् सत्यपरम् त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिम् निहितम् च सत्ये सत्यस्य सत्यम् ऋतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकम् त्वाम् शरणम् प्रपन्नाः सत्यव्रतम् सत्यपरम् त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिम् निहितम् च सत्ये सत्यस्य सत्यम् ऋतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकम् त्वाम् शरणम् प्रपन्नाः अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा देवताओं ने प्रार्थना की हे प्रभो आप अपने पूर्ण व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि पालन तथा संहार जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य हैं। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी न हो, अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य हैं, इसीलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर समभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हरेक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। इस श्लोक को पढ़ने से आपको सबसे पहली बात क्या नजर आती है? सत्य है। कितनी बार है सत्य यहाँ शब्द का प्रयोग? नौ बार। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, अलंकार युक्त, और इसमें जितने भी तरह से व्याकरण के दृष्टि से सत्य शब्द का प्रयोग यहाँ सब तरीकों से किया गया है। सत्यव्रतम, भगवान सत्यव्रत हैं, क्योंकि जो भी वो संकल्प करते हैं, जो भी व्रत लेते हैं, वो सत्य होता ही है। कोई भगवान को अपने संकल्प से हटा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। भगवान अपना व्रत पूरा करके ही रहेंगे। सत्य परम, वो परम सत्य है, उनसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। त्रिसत्यम अर्थात जगत के या सृष्टि के सृजन के पहले वो सत्य है, जब पालन होता है सृष्टि का उस समय भी वो सत्य है, वही एकमात्र सत्य होते हैं, और सृष्टि के संहार के बाद भी श्री कृष्ण ही सत्य रहते हैं। तो सृष्टि के पहले, बीच में और बाद में, तीनों ही वर्गों में वो सत्य ही रहते हैं, इसलिए उनका नाम है त्रिसत्यम। सत्यस्य योनिम अर्थात इस जगत में जितने भी और सत्य हैं, उन सब के वो योनि हैं, उन सब के उद्गम हैं। जैसे सृष्टि भी एक सत्य है, आत्मा भी सत्य है, और तरह तरह के सत्य हैं, परंतु इन समस्त सत्यों के उद्गम श्री कृष्ण है। तो मूल सत्य हैं जिनसे अन्य सत्य उत्पन्न होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्ण पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। निहितम च सत्य कि इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, उन सब में सत्य के रूप में आप प्रवेश कर चुके हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम कि आप अणु के भीतर भी आप प्रकट हुए हैं। आप हर एक वस्तु में, हर एक प्राणी के हृदय में हैं, हर एक अणु में हैं, आप हर एक लोक में, ग्रह में प्रवेश करके उस ग्रह को अपने कक्षा में आप रखते हैं ताकि वो घूमता रहे। आप ब्रह्मांड के आत्मा हैं, सारे सृष्टि के आत्मा हैं। सत्यस्य सत्यम और वास्तव में जो भी कुछ सत्य के रूप में माना जाता है, उसके अंदर जो सत्य है वो आप हैं। ऋत सत्य नेत्रम, जो भी सत्य चीजें हैं, जो बहुत ही सुनेत्र होती हैं, जो समझने के लिए बहुत ही प्रसन्नात्मक होते हैं, वो भी आप ही हैं। सत्यात्मकम, क्योंकि आपके बारे में जो कुछ भी है, आपके संदर्भ में जो भी कुछ है, वो सत्य है। आपका नाम सत्य है, आपका धाम सत्य है, आपका रूप सत्य है, आपकी लीलाएं सत्य है, आपके भक्त सत्य हैं, आपका ऐश्वर्य, आपकी शक्ति सत्य है, आपसे संबंधित जो भी कुछ है वो सत्य है। सत्य ही आपकी आत्मा है, आपका सार है, और इसी कारण से त्वाम शरणम प्रपन्नाः, इसी कारण से हम आपके शरण में आते हैं, हमारी रक्षा करिए। ये सुंदर प्रार्थना है और इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, क्योंकि अब समझ सकते हैं इतने महत्वपूर्ण तत्वों को यहाँ देवतागण कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि हे प्रभु, ये शरीर जो है, ये भौतिक शरीर, ये एक वृक्ष के समान है जिसके दो फल होते हैं। एक फल है सुख और दूसरा फल है कौन सा? दुख। सुख और दुख, इस भौतिक शरीर जो वृक्ष के समान है, इसके दो फल होते हैं, एक सुख और दूसरा दुख। और ये सुख का जो फल है, इसके चार प्रकार के स्वाद होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ। और इन चार पुरुषार्थों को हमारे पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। और ऐसे अनुभव करते समय किसी भी व्यक्ति को ये छह प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। वो क्या है? वो है शोक, वो है भूख, प्यास, मृत्यु, बुढ़ापा और मोह अर्थात ब्रह्म। तो इन छह प्रकार की कष्टों से गुजरते हुए वो इस सुख के फल को भोगने का प्रयास करता है व्यक्ति। और इस शरीर के सात प्रकार के त्वचा होते हैं, छाल होते हैं, जैसे वृक्ष के छाल होता है, वल्कल जिसे को कहते हैं, जिस प्रकार से ये त्वचा है, रक्त है, मांस है, हड्डी है, ऐसे इसके नौ प्रकार के छेद हैं इस वृक्ष के, जो हमारे आंखें, कान, मुंह आदि है। साथ साथ में इसके दस पन्ने हैं, पत्र हैं, जो कि ये दस प्रकार के वायु हैं, जो प्राण वायु हमारे शरीर में चलते हैं और सारे शरीर के कार्य संभालते हैं। इस वृक्ष का, इस वृक्ष के जो कारण है वो है, वो तीन प्रकार के जड़ हैं, जो कि सत्वगुण, रजगुण, तमगुण के संग से उत्पन्न होते हैं। साथ साथ में इस वृक्ष के आठ शाखाएं हैं। ये आठ शाखाएं कौन सी हैं? जो पंच महाभूत, भूमि, आप, नल, वायु और तीन सूक्ष्म पदार्थ, मन, बुद्धि और अहंकार। और इस वृक्ष के ऊपर दो पंछी बैठे हैं, आत्मा और परमात्मा। और आप हे प्रभु इस वृक्ष के वास्तविक मूल हैं। और हरेक व्यक्ति को अपने अपने कर्मों के अनुसार आप दुख और सुख प्रदान करते हैं। आप ही सृष्टि करता है, आप ही प्रकट हुए हैं इस सृष्टि में। और ऐसे प्रकट होके आपने आपके बारे में जो सत्य है वो प्रकट कराया है। यदि आप ऐसे प्रकट नहीं होते तो हम सबको ज्ञान कैसे होता कि आप कैसे दिखने में हैं, आप कौन हैं, आप क्या हैं, ये पता नहीं चलता। तो आप ऐसे यहाँ सृष्टि में प्रकट होकर ऐसे काल्पनिक जो धारणाएं होती हैं लोगों को आपके बारे में, वो आप नष्ट कर देते हैं और जो सत्य है उसकी स्थापना करते हैं। और ऐसे सत्य में आपको जानने के लिए केवल भक्ति का पथ है। जो भक्त हैं वो भले भांति आपको जान लेते हैं, परंतु जो भक्ति के पथ को स्वीकार नहीं करते हैं, जो अन्य लोग हैं, वो भले तपस्या करें, भले वो वैरागी बन जाएं, भले वो अन्य किसी भी आध्यात्मिक उन्नति के पथ को स्वीकार करें, वो आपको जान नहीं पाएंगे। फिर वो प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, येन ये रविनदाक्ष विमुक्त मानिनस पय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो अनादृत युष्मद् अंग्रयः। कि हे प्रभु, ऐसे लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हुए आध्यात्मिक जीवन में ऊंची अवस्था में स्थित ऐसा मानते हैं, अपने आप को मुक्त मानते हैं, परंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध होती है और मुक्त न होते हुए अपने आप को मुक्त समझते हैं। यद्यपि वो बहुत तपस्या करते हैं और ऐसे तपस्या में बहुत कष्ट होता है, आरोही कृच्छ्रेण, और तपस्या के फल स्वरूप वो अपने आप को ऊंचे अवस्था में स्थित मानते हैं, परंतु उनका पतन हो जाता है क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर किया है। वो आपके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, आपके दिव्य रूप को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उनका पतन निश्चित है, यद्यपि वो बहुत तपस्या क्यों न कर रहे हों। और साथ साथ में ऐसे जो आपके भक्त होते हैं वो आपके चरण कमलों के आश्रय को स्वीकार करते हैं, वो समझते हैं कि आपके चरण कमल वो एक नौका के बराबर हैं जो बहुत उपयुक्त हैं इस भवसागर को हम सबको पार कराने के लिए। और जो ऐसे आपके चरण कमल रूपी नौके में बैठ जाता है उसको भवसागर पार करना इतना आसान हो जाता है कि मानो कोई व्यक्ति एक वत्स के खुर के चिन्ह में जितना पानी है उसको लांगने में जितनी कठिनाई होती है उतनी ही कठिनाई ऐसे भक्त को भवसागर पार करने में होती है। दूसरे शब्दों में भक्त को भवसागर पार करना बहुत ही सरल हो जाता है। तो हे प्रभु, अभी आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं, परंतु कंस अभी आपकी हत्या करने के लिए तुला हुआ है, तो यहाँ पर बहुत धोखा है। अवश्य आप हम सबकी रक्षा करेंगे, हम आपके शरणागत भक्त हैं। ऐसे देवतागण प्रार्थना करते हैं और फिर वो माता देवकी से कहते हैं कि हे माता देवकी, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, क्योंकि भगवान आपके हृदय में प्रकट हुए हैं और अवश्य वो कंस का वध करेंगे, तो आप पूरी तरह से भय से मुक्त हो जाइए। और फिर देवतागण वहां से चले गए। जब वहां से चले गए देवतागण, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब प्रकट होने का सही समय हो गया है। और जब वो प्रकट हुए तो वसुदेव बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। भगवान का प्रकट होना ये कोई साधारण बात नहीं थी। भगवान का जन्म क्योंकि हमारे जन्म की तरह नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में उनको कोई माता पिता भी नहीं हो सकते, केवल भगवान अपने दो शुद्ध भक्तों को चुनते हैं और उनको वो माता और पिता बना लेते हैं। तो इस बार भगवान ने इसी तिथि को चुना प्रकट होने के लिए। उस समय जितने भी नक्षत्र थे आसमान में वो सब बहुत शुभ थे। नक्षत्रों की, तारों की, ग्रहों की जो व्यवस्था थी, जो स्थान थे आकाश में, सब अपने अपने जगह में बहुत शुभ हो गए थे। विशेष करके रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र ये बहुत शुभ मानी जाती है और ये ब्रह्मा जी के स्वयं उनके निर्देशन में होती है ये नक्षत्र। और जब विष्णु भगवान प्रकट होते हैं तो उस समय ये रोहिणी नक्षत्र का प्राधान्य होता है। तो ऐसे ही हुआ, सारे पृथ्वी लोक पर एक शांति, सुख और समृद्धि का माहौल फैल गया। जितने भी ऋषि मुनि थे जो अपने यज्ञ आदि करते थे कंस के भय से और कंस के साथियों के अत्याचारों के कारण, वो अपने यज्ञों को संपन्न नहीं कर पा रहे थे, परंतु अब उनके हृदय में एक प्रकार का आनंद उत्पन्न हुआ और जो यज्ञ की अग्नि है वो भी प्रज्वलित रूप से जलने लगी। तो बड़े हर्षित होकर सारे ऋषि मुनि अपने यज्ञों को करते जा रहे थे, वेदों का पाठ आदि करते जा रहे थे। उधर प्रकृति में भी एक अलौकिक सौंदर्य आ गया। सब जगह पंछियां जो पक्षी हैं अपना मधुर गान गाए जा रही थीं, नदियां बहुत शीतल और पवित्र जल से, नदियों के भीतर जल ऐसे बह रहा था, वृक्षों में फल और फूल प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ रहे थे और सरोवरों में हंस आदि बड़े आनंद से तैर रहे थे। सब जगह आनंद ही आनंद प्रतीत हो रहा था। ऐसे अवस्था में भगवान ने प्रकट होना ठीक समझा, क्योंकि ये प्रकृति ये भी भगवान की शक्ति है, भगवान की सेविका है, तो उन्होंने भी सुंदर व्यवस्था कर ली। बल्कि जिस प्रकृति की बात हम कर रहे हैं वो योग माया है, क्योंकि भगवान किसी भौतिक स्थान में ऐसे प्रकट नहीं हो सकते। भगवान प्रकट हुए थे अपने ब्रज भूमि में, मथुरा भूमि में, जो कि इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता है। यद्यपि ऐसे प्रतीत होता है बाह्य दृष्टि से, परंतु यह सदैव एक आध्यात्मिक स्थान रहता है। तो उस समय कारागार में माता देवी की के हृदय से सीधे भगवान बाहर प्रकट हुए। जैसे एक माता को पुत्र को या बच्चे को जन्म देते समय बहुत कष्ट होता है जब बच्चा गर्भ से निकलता है, ऐसे कष्ट माता देवी को नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण जो कि माता देवकी के अंदर प्रकट हुए थे वो केवल बाहर आए, बस अंदर से बाहर सीधे, कोई उनको कष्ट नहीं हुआ। और किस रूप में आए? भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया। और ऐसे अवस्था में नंद महाराज, वसुदेव और देवकी दोनों आश्चर्यचकित रह गए, देखते रह गए। भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप में थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, उनके काले काले लंबे बाल थे, उनकी आंख कमलों के समान खिले हुए थे और विस्तृत थे, उनके कंठ में कौस्तुभ मणि चमक रही थी, वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था, पीतांबर धारण किया हुआ था और उनके शरीर की कांति एक वर्षा के ऋतु के बादल के समान था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान वहां चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। नंद महाराज वसुदेव ने जब विष्णु को देखा इस रूप में और समझा कि ये मेरे पुत्र हैं परंतु भगवान हैं, तो बड़े विस्मित हो गए। तो विस्मय किन कारणों से था? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अनेक कारणों से विस्मय जागृत हुआ था नंद महाराज के मन में। एक कारण तो ये था कि जिस स्थान में भगवान प्रकट हुए थे वो कौन सा स्थान था? कारागार था कंस का, जो कि बहुत क्रूर और शक्तिशाली व्यक्ति था, और कंस ने पहले ही 6 बच्चों की हत्या कर दी थी। और ऐसे अवस्था में, ऐसे स्थान में, ऐसे इतिहास को ध्यान में रखते हुए कि 6 बच्चों की हत्या हुई है और दोनों देवकी और वसुदेव बंदी हैं, वहां पर भगवान प्रकट हुए, ये पहले विस्मित होने का कारण था नंद महाराज के लिए। दूसरा कारण ये था कि वसुदेव सोच रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान तो सर्वव्यापी है, तो ऐसे देवकी के गर्भ से कैसे प्रकट हुए? वो जो सर्वव्यापी परम सत्य हैं, वो अभी किसी के गर्भ से कैसे प्रकट हुए? वैसे वसुदेव के पुत्र हैं वासुदेव, और वासुदेव का अर्थ ही ये होता है कि जो सर्वव्यापी हैं। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण ये था कि वसुदेव ने देखा कि ये नवजात बच्चा कपड़ों सहित, बाल सहित, आभूषण गहनों सहित प्रकट हुआ है, जन्म लिया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जगह कहते हैं कि आप ऐसे कितने बच्चों को जानते हैं जिन्होंने 4 भुजाओं से जन्म लिया है, 7 4 हाथों से जो जन्म लेते हैं, और साथ साथ में कपड़े भी पहन के आए, आभूषण आदि कौस्तुभ मणि आदि भी स्वीकार करके आए। तो ये तीसरा कारण था वसुदेव को विस्मित होने के लिए। और साथ साथ में वसुदेव ये भी सोच रहे थे कि वैसे भगवान श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं, अपने गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वो मेरे आराध्य देव हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं और अब वो मेरे पुत्र के रूप में आ गए, मेरे ही भगवान मेरे पुत्र हो गए। तो ऐसे इन चार कारणों से वसुदेव को बहुत आश्चर्य हुआ, ये एक चमत्कार हो गया था। तो वसुदेव भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, वास्तव में सृष्टि आप ही से आती है, सृष्टि के सृजन के लिए, पालन के लिए और विनाश के लिए अवश्य कोई निमित्त होते हैं, कोई देवतागण आदि करते हैं, परंतु मूल सृष्टि के सृजन करने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले और सृष्टि का संहार करने वाले आप ही हैं। मूल रूप से सबको शक्ति देने वाले आप ही हैं और आप इस प्रकार से यहां पर प्रकट हुए हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। यद्यपि आप सर्वव्यापी हैं, आप यहां एक स्थान में प्रकट हुए हैं, आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में आप प्रवेश नहीं हुए हैं, क्योंकि आप वैसे पहले से ही थे। आप इस ब्रह्मांड में सब जगह रहते हैं, इसलिए आपके प्रवेश करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अब जब आप यहां पर प्रकट हुए हैं ऐसे रूप में, हमारे मन में आनंद है और चिंता भी है, क्योंकि कंस आपकी हत्या करने के लिए, आपको मारने के लिए बस तैयार बैठा है। फिर माता देवकी ने भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और कहा कि आप ही सृष्टि के उद्गम हैं, सृष्टि के पालन करने वाले हैं, सृष्टि के संहार हैं, और सृष्टि का संहार जब हो जाता है तब अनंत शेष के रूप में ही आप अकेले रह जाते हैं और कोई नहीं रह जाता, जितने भी बड़े बड़े देवता हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, सृष्टि के अंत में केवल आप ही हैं। और अब हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप इस चतुर्भुज रूप को और धारण न करें, एक साधारण द्विभुज मनुष्य बच्चे के रूप को आप स्वीकार करें, क्योंकि जब ऐसे लोग देखेंगे तो वो क्या समझेंगे, वो क्या सोचेंगे। माता देवकी के मन में थोड़ी शंका थी कि यदि लोगों को ने देखा कि ये चार भुजाओं वाला बच्चा है तो उनके मन में क्या विचार होगा। पहली बात तो ये है कि कंस को पता चलेगा कि भगवान विष्णु ने जन्म लिया है, तो कंस मारने के लिए अवश्य आएगा उस बच्चे को, और माता देवकी ये नहीं चाहती थी और न ही वसुदेव चाहते थे। तो वो सोच रहे थे कि कंस आएगा तो इस बच्चे को छुपाना चाहिए कहीं पर, लेकिन एक चार भुजाओं वाले बच्चों को छुपाना मुश्किल होता है ना। एक दो भुजाओं वाला बच्चा है तो किसी भी यहां दूसरे के घर में भेज सकते हैं और उनके बच्चे कह के कह सकते हैं, लेकिन चार भुजाओं वाला बच्चा है तो सभी के नजर में आ जाएगा और ये खबर तो फैल जाएगी कि चार भुजाओं वाला बच्चा बच्चे ने जन्म लिया है। इसलिए माता देवकी नहीं चाहती थी कि भगवान अपना चतुर्भुज रूप धारण करें। तीसरी बात माता देवकी सोच रही थी कि किसी बच्चे को जन्म लेना इस संसार में चार भुजाओं से, ये बड़ा विचित्र है, अस्वाभाविक, ऐसे कभी देखा नहीं जाता। और फिर हे प्रभु, लोगों को जब मैं कहूंगी यहां पर मथुरा में कि ये मेरे बच्चे हुए हैं, उनकी चार भुजाएं हैं, वो कहेंगी कैसे संभव है, ये तो भगवान है, आपके बच्चे कैसे हो सकते हैं। भगवान के उदर में सारी सृष्टि रहती है, भौतिक और आध्यात्मिक, और वास्तव में ये लीला हुई भी थी। आगे चल के श्री कृष्ण माता यशोदा को अपना विश्व रूप अपने खुले हुए छोटे से नन्हे मुन्ने मुख में दिखाने वाले थे, दिखाने वाले हैं अभी। जब कृष्ण प्रकट हो जाएंगे और उनके ऊपर जब आरोप लगाया जाएगा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो माता यशोदा कहेगी कि मुख खोल के दिखाओ, तो श्री कृष्ण खोल लेंगे मुख और माता देखेंगी मिट्टी तो क्या, यहाँ तो सारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही नहीं सारी सृष्टि है यहाँ, और उस सृष्टि के भीतर है ये पृथ्वी लोक जिसमें वृंदावन है, वृंदावन में माता यशोदा है जो कि कृष्ण के मुख के अंदर देख रही है। तो माता देवकी कहना चाह रही है कि लोग कहेंगे कि जिस भगवान के उदर में सारी सृष्टि रहती है और वो भगवान अब तुम्हारे उदर में आ गए, ये कैसे हो सकता है? तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसे संभव है। इसलिए कृपया आप दो भुजाओं वाले आप बन जाइए, एक साधारण बच्चे की तरह आप प्रकट हो जाइए। तो ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण अपने हल्के मुस्कान से दोनों वसुदेव और देवकी से कुछ कहने लगे। वैसे भगवान ने चतुर्भुज रूप क्यों धारण किया, सीधे बाल रूप दो भुजाओं वाले बाल रूप को क्यों नहीं धारण किया? पहली बात यह है कि वो देवकी और वसुदेव को आश्वासन दिलाना चाहते थे, साहस दिलाना चाहते थे कि मैं भगवान हूं, देखो मेरे चार भुजाएं हैं, मैं पीतांबर कौस्तुभ मणि आदि से ही प्रकट हुआ हूं, मैं एक साधारण बच्चा नहीं हूं जो जिसको कि कंस मार सकता है, तो बिल्कुल नहीं डरना, मैं स्वयं परम सत्य भगवान हूं और मैं यहां कंस की हत्या करने के लिए और मेरे प्रिय भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ हूं, तो तुम डरना नहीं। तो देवकी और वसुदेव का हौसला बढ़ाने के लिए, उनको साहस देने के लिए कि उनका ये आठवां बच्चा स्वयं भगवान है और कोई डरने की कारण नहीं है, तो भगवान ऐसे चतुर्भुज में पहले प्रकट हुए। दूसरा कारण ये था, वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि जब श्री कृष्ण माता यशोदा के पास प्रकट हुए तो उस समय वो चतुर्भुज नहीं थे, वो तो द्विभुज थे, एक साधारण बच्चे के एक मनुष्य शिशु के समान दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा क्यों? वसुदेव और देवकी कोई साधारण नहीं है व्यक्ति, और आगे चल के भगवान बताएंगे कि वसुदेव और देवकी कितने महान थे कि भगवान ने उनको चुना माता पिता बनने के लिए। तो भगवान तो कोई साधारण ऐसे वैसे व्यक्ति को तो अपना माता पिता नहीं चुन सकते, कोई विशेष खास भक्त ही होंगे जिनको भगवान ऐसे चुनेंगे माता पिता के लिए। तो यद्यपि वसुदेव और देवकी भगवान के शुद्ध भक्त थे, परंतु माता यशोदा के साथ यदि उनकी तुलना की जाए तो उनका स्थान उतना श्रेष्ठ नहीं था, क्योंकि वसुदेव और देवकी के वात्सल्य प्रेम में ऐश्वर्य ज्ञान का मिश्रण था। वो जानते थे कि उनका पुत्र भगवान है और इसलिए जो वात्सल्य प्रेम था उसमें एक प्रकार का विघ्न आ गया। इतनी मधुरता, इतनी निकटता उस वात्सल्य प्रेम में नहीं रही। माता यशोदा वृंदावन में श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र मानती थी, उनके मन में कभी ऐसे विचार प्रवेश नहीं कर सकता था कि मेरा पुत्र भगवान है, और यदि कोई माता यशोदा को ऐसे बताता भी था कि आपका पुत्र नारायण है, फिर भी माता यशोदा को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं नंद महाराज को पड़ता, भगवान होगा कुछ भी होगा लेकिन मेरा पुत्र है, और ये यदि भोजन सही समय पर नहीं लेगा तो बीमार पड़ जाएगा, उसको स्वाइन फ्लू आ जाएगा, तो मुझे सही अभी सही समय पर खिलाना पड़ेगा, मुझे दवाई देनी होगी अच्छी तरह से, उसकी रक्षा करनी होगी। तो वसुदेव के हृदय में इस प्रकार का शुद्ध माधुर्य भाव नहीं था, क्योंकि उनका भाव भी ऐश्वर्य युक्त था, इसलिए पहले भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माता यशोदा के हृदय में ऐसा ऐश्वर्य का भाव बिल्कुल नहीं था, तनिक भी नहीं था, इसीलिए वो केवल अपने द्विभुज रूप में प्रकट हुए, जिस रूप में वो माता यशोदा से प्रेम स्वीकार करना चाहते थे उस रूप में वो सीधे प्रकट हो गए। और यही कारण है हम देखते हैं कि यद्यपि वसुदेव और देवकी माता पिता हुए भगवान के, उनके शुद्ध भक्त हैं, फिर भी केवल जन्म दिया उन्होंने कृष्ण को, परंतु जो बच्चा बड़ा हुआ, और आप तो जानते हैं, आप में से जो माता पिता हैं आप जानते हैं, आपके जो बच्चे हैं सबसे अच्छा समय कौन सा था बताइए आपके लिए, बच्चों की तुलना बच्चों के संदर्भ में, जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा बड़ा होता रहा, तो बड़े हो जाने के बाद फिर तो आपके हाथ से निकल गए, बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं, उनकी अपनी अपनी बुद्धि आ जाती है, कोई ब्रह्मचारी भी बनना चाहते हैं, परंतु जब बच्चा जन्म देता है जन्म लेता है तो माँ के लिए बहुत कष्ट होता है, वो 9 महीने भी माँ को बहुत संभाल के रहना पड़ता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो अब जन्म जब होता है माँ के लिए भी बहुत कष्ट होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी कष्ट होता है, मेरी बात सुनते नहीं है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है शिशु काल में तो उसकी जो कार्य होते हैं वो इतने मीठे होते हैं, उसकी तोतली बोली, वो धीरे धीरे से चलने को सीख रहा है, फिर से गिर जाता है, उसका रोना धोना खाना पीना सब मधुर होता है, इसलिए ऐसे छोटे बच्चे के बारे में जिस घर में छोटा बच्चा होता है अधिकतर जो घर में बातें होती हैं बच्चे के ऊपर संदर्भ में ही होती हैं, आज उसने ऐसा किया आज वैसा किया, एक साधारण बच्चे के बारे में ऐसे होता है तो आप सोचिए कि जब सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण शिशु बन जाएंगे तो क्या वृंदावन में सबके मन में सबके होठों पर यही बातें नहीं होंगी श्री कृष्ण के बारे में। तो महाराज नंद और माता यशोदा, इनको वो आनंद मिला कि श्री कृष्ण के शिशु लीला बाल लीलाओं का और पौगंड लीलाओं का वो दर्शन कर पाए, उनमें शामिल हो पाए, वो श्री कृष्ण का लाड प्यार कर पाए। इस अवस्था में माता देवकी और वसुदेव नहीं कर पाए, केवल उनका काम था जन्म देना, उनको जन्म दिया और फिर श्री कृष्ण को वहां से जाना पड़ा। इसका मतलब है कि यशोदा और नंद महाराज देवकी और वसुदेव से श्रेष्ठ है। तो खैर, भगवान माता देवकी और वसुदेव की ओर देख के कहने लगे, हे मेरे प्रिय माता, ये जान लो कि आप पहली बार मेरी माता नहीं बने हो। और वसुदेव से देखकर कहने लगे कि पहले बार आप मेरे पिता नहीं बने हो, ये तीसरी बार मैं आपका पुत्र बन के आया हूं। स्वयंभुव मनमंत्र में, अर्थात पहले मनु के काल में, अब सातवें मनु का काल है ना, तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में सातवें मनमंत्र में प्रकट हुए हैं, वैवस्वत मनु के मनमंत्र में। तो पहली बार जब आप प्रकट हुए वो स्वयंभुव मनु के मनमंत्र में था, त्रेता युग में, और उस समय है माता आपका नाम था प्रश्नी और मेरे पिताजी का नाम था जो आपके पति थे सुतपा। सुतपा ये ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जो प्रजापति थे। तो ब्रह्मा जी ने आप दोनों से कहा था कि अभी सृष्टि का सृजन करना है, अब संतान की उत्पत्ति आप जाके करो। तो आपने सोचा कि संतान की उत्पत्ति करने के पहले आपको तपस्या करनी चाहिए, तो आप स्वर्ग लोक के 12,000 वर्ष अर्थात दिव्य वर्ष में आपने तपस्या की, बहुत आपने सहन किया, ठंडी गर्मी वर्षा आदि को सहन करते हुए, और आपने क्या भोजन किया? जो पेड़ों से पत्ते गिरे हैं जमीन पर और वो सूखे हो गए हैं, ऐसे सूखे पत्तों के ऊपर आपने आपका जीवन यापन किया। ऐसे इतने वर्षों तक आपने तपस्या की, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपके सामने प्रकट हुआ और मैंने पूछा आपको कि आपको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, और आपने कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए, क्योंकि आप मुझे आपके पुत्र के रूप में चाहते थे, तो मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी और प्रश्न गर्भ के रूप में मैं प्रकट हुआ। और उसके बाद में अनेक वर्षों बाद, हे माता, आप अदिति के रूप में आपने जन्म लिया, जो देवताओं की मां है, और मेरे पिता आप कश्यप मुनि के रूप में प्रकट हुए, आप भी प्रजापति थे, और मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया, मेरा नाम था वामन। तो ये दूसरी बार था जब मैं आपका पुत्र बना, और अब आपकी इच्छा को स्वीकार करके मैं आपका पुत्र तीसरी बार बना हूं। ये प्रश्न आ सकता है कि यदि वो इतने अच्छे भक्त थे तो मुक्त होकर भगवान के धाम में क्यों नहीं चले गए, क्यों आए फिर से तीन बार, सही है ना? तो इसका उत्तर ये है कि वो मुक्ति नहीं चाहते थे भगवान से, वो भगवान को अपना पुत्र बनाने के लिए चाहते थे, तो भगवान ने स्वीकार किया, इसलिए मुक्त न होकर वो यहीं पर रहे भौतिक सृष्टि में, और भगवान को उन्होंने जन्म दिया। परंतु इस बार भगवान ने कहा, मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप सतत मेरा स्मरण करो और याद रखना कि मैं कौन हूं, मैं भगवान हूं, मैं परम सत्य हूं। ऐसा यदि आपका जीवन बीतेगा तो इस जीवन के अंत में आप मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे, फिर पुनः उनको यहां जन्म लेने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसा भगवान ने माता देवकी और वसुदेव को बतलाया और फिर वो अपने शिशु रूप में परिवर्तित हो गए, द्विभुज रूप में, एक साधारण बच्चे की तरह। और उन्होंने वसुदेव को हृदय से प्रेरित किया कि जाओ मुझे गोकुल में ले जाओ, वहां नंद महाराज और यशोदा माता, उनके पुत्री का जन्म हुआ है, तो मुझे वहां रख लो और पुत्री को ले आओ। श्री कृष्ण ने पहले से ही योग माया को आदेश दिया था, आपको याद होगा, इसकी चर्चा हम बलराम जयंती पे हमने की थी कि योग माया, जब मैं मथुरा में माता देवकी से जन्म लूंगा तो उस समय तुम वहां गोकुल में माता यशोदा से जन्म लेना। तो श्री कृष्ण के प्रकट होने के थोड़े ही समय बाद गोकुल में योग माया देवी यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट हुई। इसलिए योग माया इस भौतिक दुनिया में श्री कृष्ण की छोटी बहन मानी जाती है, और वहां प्रकट होने के बाद अभी वो अनेक स्थानों में विख्यात हैं। उनकी कई नाम हैं, जैसे अंबिका, चंडी, वैष्णवी, ईशानी, शारदा इत्यादि। तो वसुदेव ने अपने बच्चे को, जो कि स्वयं भगवान है और अब वास्तव में बच्चे जैसे दिख रहे थे, उनको उठाकर वो ले जाना चाहते थे, और भगवान की योग माया के योजना से उनके जो जंजीर थे वो खुल पड़े, जो दरवाजे थे कारागार के वो अपने आप खुल गए, जितने भी वहां पहरेदार थे कंस ने रखे हुए, उन सब को इतनी गहरी नींद आई कि उनको कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। और वसुदेव ने बाल कृष्ण को अपने हाथों में ले लिया और उठे और चल पड़े गोकुल की ओर। वहां पर वर्षा हो रही थी, स्वयं अनंत शेष आए, उन्होंने अपने फणों से बाल कृष्ण की और वसुदेव की भी रक्षा की उस वृष्टि से। और बारिश के कारण यमुना जी में बाढ़ आ गया था, परंतु वसुदेव श्रद्धापूर्वक बस चलते रहे। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र ने श्री रामचंद्र और उनके वानर सेना के लिए रास्ता बना दिया, उसी प्रकार से यमुना देवी ने वसुदेव के लिए रास्ता बना दिया। दोनों जल दो तरफ हो गया और बीच में से आराम से वसुदेव चलकर चले गए। कई वैष्णव आचार्यों ने ऐसे भी कहा है कि श्री कृष्ण जो कि टोकरी में थे वसुदेव के सर के ऊपर, वो अचानक गिर पड़े जल के भीतर और वसुदेव प्राय पागल हो गए। ढूंढते ढूंढते उनको पता नहीं चला क्या करना चाहिए। हताश होकर, निराश होकर वो इधर उधर ढूंढते रहे जल के भीतर और अचानक श्री कृष्ण फिर प्रकट हो गए और बड़े आनंद से फिर से श्री कृष्ण को वो आगे ले गए। तो श्री कृष्ण ऐसे यमुना नदी में क्यों गिर पड़े? वसुदेव के गलती से नहीं, वो अपनी इच्छा से गिर पड़े। ऐसे कई आचार्यों ने कहा है कि इसका एक कारण था कि यमुना देवी बाढ़ में क्यों आई थी, वो और भी ऊपर आ रही थी क्योंकि उनको श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करना था और उनको पता था कि आगे चल के श्री कृष्ण मेरे जल में बहुत क्रीड़ा करने वाले हैं, मेरा जीवन धन्य होने वाला है। परंतु वो इतनी आतुर थी कि प्रतीक्षा नहीं कर सकती, कर पा रही थी कि अब अनेक वर्ष बीतेंगे, जब कृष्ण बड़े हो जाएंगे तब आएंगे यहाँ लीला करने के लिए। तो जब वसुदेव कृष्ण को लेकर जा रहे थे उसी समय वो इतनी आतुर थी कि ऊपर आ रही थी। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि इतना ऊपर नहीं हूं, मैं ही आता हूं। तो यमुना के ऊपर कृपा कर दी उन्होंने। और एक सूक्ष्म तत्व है जो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम् न गच्छति। वृंदावन छोड़कर श्री कृष्ण कभी नहीं बाहर जाते हैं। तो फिर मथुरा में कौन गए? फिर द्वारका में कौन गए? हस्तिनापुर में कौन गए? क्या वो कृष्ण नहीं थे? अवश्य कृष्ण थे, परंतु कृष्ण का ये वासुदेव रूप था, कृष्ण का विस्तार था वासुदेव रूप में। जिस प्रकार बलराम जी भी कृष्ण के विस्तार हैं, वासुदेव ये भी कृष्ण के विस्तार हैं। कृष्ण और वासुदेव में एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। जैसे हम वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो संवाद हो रहा था, उसकी चर्चा जब कर रहे थे तो ये बात सामने आई थी कि भगवान के भिन्न रूपों में हमें भेद नहीं करना चाहिए, केवल रस मात्र का भेद होता है, तत्व का भेद नहीं होता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण और वासुदेव में कोई अंतर नहीं है, वासुदेव भी कृष्ण ही हैं। परंतु क्योंकि ये श्री कृष्ण मथुरा और द्वारका में प्रकट हुए हैं, जहां की वृंदावन जैसा मधुर भाव नहीं रहता है, मधुरता होती है परंतु वृंदावन जितनी नहीं होती है। मथुरा और द्वारका में ऐश्वर्य का प्राधान्य होता है, इसलिए श्री कृष्ण जो कि वृंदावन में केवल अपने आप को एक ग्वालबाल समझते हैं, मथुरा और द्वारका में अपने आप को एक क्षत्रिय और राजकुमार समझते हैं, तो वही वृंदावन के कृष्ण अपने आप को मथुरा में ठीक स्थान में नहीं समझते, इसलिए वो अपने आप को विस्तार करते हैं और मथुरा और द्वारका में वासुदेव जाते हैं। तो वासुदेव और कृष्ण में अंतर नहीं है, केवल एक भाव और रस का अंतर मात्र है। और श्री कृष्ण फिर यहाँ वृंदावन में अप्रकट रूप में रह जाते हैं। प्रकट रूप में श्री कृष्ण चले जाते हैं वासुदेव के रूप में मथुरा, और अप्रकट रूप में अपनी अप्रकट लीला जारी रखते हैं वृंदावन में। वृंदावन के कृष्ण हैं यशोदा नंदन या नंद नंदन, और मथुरा में हैं देवकी नंदन। तो यहां जबकि बाल कृष्ण यमुना जी में गिर पड़े उनकी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से, तो ऐसे वैष्णवाचार्यों ने समझाया है कि अब देवकी नंदन जल के अंदर गिरे और वो फिर मथुरा में रह गए, और वृंदावन में आगे चले कौन? यशोदा नंदन कृष्ण। तो वहां परिवर्तन हुआ देवकी नंदन से यशोदा नंदन। तो जिस कृष्ण को वसुदेव ने उठाया फिर से वो यशोदा नंदन थे, ऐसे भी कहते हैं। वो एक भूमि है, एक रेखा है प्राय, जो मथुरा और वृंदावन की सीमा है। तो वहां पे यमुना है, वो परिवर्तन वहां पे हुआ, ऐसे कहते हैं। तो आगे चल के वसुदेव पहुंचे नंद महाराज के घर में। रात का समय था, आपको पता है कि श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ था। तो जब वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल में पहुंचे, वहां सभी लोग सो रहे थे। माता यशोदा के कमरे में पहुंच गए, माता यशोदा भी बहुत गहरी नींद में थी, बल्कि वो बहुत थकी हुई थी, क्योंकि उन्होंने योग माया एक पुत्री को जन्म दिया था। तो पुत्री को जन्म देने के बाद थकावट होने के कारण वो भी अभी गहरी नींद में थी, और उनको पता नहीं चला कि मेरा पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है। नंद महाराज वहां गए, नंद महाराज ने केवल पुत्री को देखा, कृष्ण को वहां पर रख दिया माता यशोदा के पास में, उस पुत्री को अर्थात योग माया को उठा लिया और वहां से चले गए, वापस मथुरा पहुंच गए। अब और एक रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अधिकतर लोगों को नहीं पता है। जहां तक कृष्ण जन्म की बात है, लोगों को यहीं तक पता है कि वसुदेव ने कृष्ण को माता यशोदा के पास में रखा और योग माया को उठाकर वो लेकर आए, यहां तक सबको पता है। परंतु ऐसे बताया जाता है अन्य शास्त्रों में, हरिवंश पुराण आदि शास्त्रों में, कि माता यशोदा के जुड़वे बच्चे हुए। एक थे कृष्ण जो पहले जन्म लिए, और थोड़ी देर बाद एक कन्या का जन्म हुआ जो थी योग माया। तो कृष्ण एक तरफ थे और योग माया दूसरी तरफ थी। जब वसुदेव वहां पर कृष्ण को लेकर आए तो उन्होंने केवल पुत्री को देखा, कृष्ण को नहीं देखा। पुत्री को उठाकर वो चले गए, कृष्ण को रखा, और दोनों कृष्ण एक हो गए। और माता यशोदा को पता नहीं चला ये सब क्या हुआ है। अंत में जब माता यशोदा जागी और नंद महाराज आदि आए, उन्होंने देखा कि पुत्र हुआ है, तो फिर सारे जगह खबर फैल गई कि यशोदा और नंद बाबा को पुत्र का जन्म हुआ है। उधर वापस लौट गए वसुदेव उस कन्या को लेकर। जैसे ही वो कारागर के अंदर प्रवेश कर दिए तो अपने आप सारे जो दरवाजे हैं बंद हो गए, उन्होंने जंजीर अपने हाथों पैरों पर लगा दी और बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज से पहरेदार जो थे उनकी नींद खुल गई और उन्होंने सोचा अरे बच्चे का जन्म हुआ है। तुरंत भागते भागते उन्होंने कंस तक खबर पहुंचा दी और कंस इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, सोया हुआ था, परंतु हड़बड़ाकर कैसे भी उठा, बिना स्नान वान किए हुए सीधे तलवार को लेकर चले आया बच्चे की हत्या करने के लिए। और जैसे ही अंदर आया माता देवकी ने बहुत प्रार्थना की, कंस के पैरों में पड़ी कि मुझे ये एक भेंट दे दो, मेरे प्रिय भैया आपने 6 बच्चों की हत्या की है और ये तो एक बच्ची है, पुत्री है, ये तो तुम्हारी हत्या नहीं कर सकती, तो कृपया इस एक बच्ची को तो मेरे लिए छोड़ो। लेकिन कंस ने एक नहीं मानी, कंस ने नहीं सुना, कंस ने माता देवकी को वहां से हटाकर बच्चे को छीन लिया। और जिस प्रकार से कंस ने 6 बच्चों की हत्या की थी पत्थर से पीट के, उसी प्रकार से इस बच्ची के साथ भी ऐसे करना चाहा। परंतु जैसे ही कंस ने बच्ची के शरीर को पकड़ लिया और उठाए तो अचानक उनके हाथों से निकलकर वो बच्ची ऊपर चली गई और ऊपर स्थित होकर उस बच्ची ने अष्टभुजाओं वाले दुर्गा का स्वरूप धारण किया और वो कहने लगे कि हे दुष्ट कंस, तुम अपने बहन को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? इतना क्रूर नहीं बनना। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे हत्या करने वाला जो बच्चा है कहीं और जन्म ले चुका है। तो कंस हैरान हो गए, अरे ये क्या सुन रहा हूं मैं, ये क्या देख रहा हूं, स्वयं दुर्गा देवी मेरी बहन देवकी की पुत्री बन गई, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। और वैसे भी बच्चा जो मेरी हत्या करेगा उसका जन्म कहीं और हुआ, मेरी बहन से नहीं हुआ। तो कंस का भाव जो है वो पूरी तरह से बदल गया। कंस कहने लगा कि हे देवकी, मैंने तुम्हारे प्रति बहुत अपराध किए हैं, मैं बहुत क्रूर बन गया था, मैं पागल बन गया था, लेकिन क्या करूं, केवल मेरी अपनी रक्षा के लिए मैंने ऐसे किया, परंतु छह पुत्रों की हत्या तो मैंने की ही दी, और अब इस समय आठवां जो पुत्र होना था वो पुत्री हो गई, ये पता नहीं कैसे है। तो अब तक मैंने सोचा था केवल मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, अब मैं देख रहा हूं कि देवलोक से भी झूठ, ऐसे आकाश झूठी आकाशवाणी आती है, तो कैसे भाग्य है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परंतु हे देवकी मेरी प्रिय बहन, अभी मुझे समझ में आया है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, कितना दुख दिया है मैंने तुम्हें और वसुदेव को, मुझे क्षमा करना। और कंस ने देवकी और वसुदेव के चरणों में पड़ के बहुत प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मुझे गलती का एहसास हुआ है कि मैं क्या करता, आकाशवाणी ही ऐसे आई, अब आकाशवाणी ही झूठी निकली, देखो कैसे है। और फिर कंस ने अपने आप को संभाला और फिर कुछ आध्यात्मिक तत्व कहने लगे कि माता हे देखो देवकी, वैसे तो हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं, जो मारा जाता है वो कौन है, वो शरीर ही है ना, किसकी मृत्यु होती है, कौन मारने वाला होता है और कौन मरने वाला होता है, जैसे श्री कृष्ण गीता में दूसरे अध्याय में बताते हैं, वैसे कंस बोलने लगे। और वो कहने लगे कि देखो हर एक व्यक्ति को अपने भाग्य का सामना करना पड़ता है, वैसे ये छह बच्चे मरे तो मरे, लेकिन वैसे मैं तो निमित्त बना, लेकिन पूर्व उनका कोई कर्म ऐसे था जिसके कारण उनकी मृत्यु ऐसे हुई, हर एक व्यक्ति को अपना भाग्य समझना पड़ता है, कोई निमित्त कारण होता है परंतु अंततः निमित्त कारण के पीछे कोई मूल कारण भी होता है, इन्होंने भी ऐसे कोई कर्म किए होंगे जिस कारण से उनकी ऐसी हत्या हो गई मेरे हाथों से, अब क्या किया जा सकता है। इस प्रकार कंस कृपा याचना कर रहे थे, माता देवी के का हृदय पिघल गया कि हाँ अब क्या करता, ये तो भगवान के हाथ में है, निमित्त कारण मेरे बच्चों की हत्या के लिए मृत्यु के लिए तो कंस है, परंतु मूल कारण होना चाहिए कि इन्होंने पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिनकी वजह से उनको ऐसे मृत्यु को देखना पड़ा। और ऐसे दोनों वसुदेव और देवकी ने अपने आप को समझाया, अपने आप को सांत्वना दी और कहा कि ठीक है कंस, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में शोक करने से क्या लाभ, और उसके बारे से किसी दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष भावना रखने से क्या लाभ, जो हो चुका सो हो चुका, भगवान की योजना समझ के हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। देवकी और वसुदेव तो भक्त थे, तो उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं था कंस के प्रति, बहुत जल्दी उनका गुस्सा कम हो गया, ये स्वाभाविक है, हम समझ सकते हैं। फिर कंस बड़े शांत हृदय से वहां से चला गया कि चलो अभी इन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, मेरे अपराधों से मैं मुक्त हो गया। कंस वहां चले गया और वहां पर वृंदावन में खुशियां मनाई जाने लगी। अगले दिन नंद महाराज ने धूमधाम से जन्म का महोत्सव मनाया, नंदोत्सव। सारे वृंदावन के गोप गोपियां बहुत प्रसन्न हो गईं कि लंबे समय के बाद यशोदा और नंद बाबा को एक पुत्र हुआ है। अपने अच्छे से अच्छे वस्त्रों को पहनकर आए, अच्छे से अच्छे आभूषण गहने आदि पहनकर आए, साथ में भेंट आदि बहुत लेकर आए, तरह तरह के रत्न हीरे आदि। और उनके पास जो सच्चा धन था, मक्खन दूध घी ये सब साथ में लेकर आए। गवयो धनवान धान्य धनवान, ऐसे कहते हैं जिसके पास धान्य है और जिसके पास गाय है वो वास्तव में धनवान है। तो वहां नंदोत्सव के समय बड़े मुदित अवस्था में ब्रजवासी गण, गोप और गोपियां दोनों एक दूसरे के ऊपर मक्खन आदि सब फेंकने लगे और तरह तरह के शुभ वस्तुएं इधर उधर फेंकी जा रही थीं, गीत गाए जा रहे थे। जैसे आज थोड़ी देर पहले आप सब गा रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जवानों के लिए हाथी घोड़ा, बूढ़ों के लिए पाल की। तो आज भी बरसा नंद गांव में ऐसा बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी के दिन। तो खैर, नंदोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया और श्री कृष्ण ने फिर अपनी बाल लीलाएं शुरू कर दी। इस प्रकार से इस वैवस्वत मन्वंतर के अंदर ब्रह्मा जी के इस दिवस में, इस द्वापर युग के 27वें द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण ब्रजभूमि श्री वृंदावन में प्रकट हुए हम सबके ऊपर बड़ी कृपा करने के लिए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ उत्सव का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। आज दिन भर हमें उपवास करने का प्रयास करना चाहिए, निर्जल जहां तक हो सके रात को 12 बजे तक। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उपवास का वास्तविक अर्थ केवल आहार और जल से दूर रहना इतना ही नहीं है। उपवास का वास्तविक अर्थ है कि भगवान के निकट में वास करना, अर्थात अधिक से अधिक जितना हो सके उतना भगवान की सेवा में मग्न रहना आज के दिन। तो आज आप अधिक जप कीजिए, सेवा कीजिए, कीर्तन कीजिए और शाम के समय यहाँ जब कार्यक्रम होगा अभिषेक आदि का, उसमें आप अवश्य आइए। और आज रात को भी यहाँ और खुशियां मनाई जाने वाली हैं। श्री कृष्ण अपने जन्म दिवस के ऊपर और भी ज्यादा कृपालु हैं, तो उनके चरणों में हम प्रार्थना करें कि वो हमारी भक्ति की रक्षा करें, हमें शुद्ध भक्ति के पथ पे आगे आगे लेकर जाएं और उनके चरणों में नित्य रूप से आश्रय प्रदान करें। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।